तो अगला चैप्टर भी पढ़ते हैं, छोटा सा है, बहुत ही आपको इससे भी इंशाल्लाह ताला फायदा होगा अल्लाह की तौफीक से। चैप्टर का नाम है अगला बाब अस-सुन्नतु वस-सहाबतु, सुन्नत सहाबे कराम की नज़र में। अगर अरबी लफ्ज़ को देखें तो उसका मतलब है कि सुन्नत और सहाबे कराम, मुराद इसे यही है कि सहाबे कराम की नज़रों में सुन्नत का क्या मेयार था। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह के नबी के बाद बेहतरीन दौर सहाबा का दौर था, उनकी नज़रों में सुन्नत की क्या अहमियत, इसको सुनते वक्त साथ साथ जहन में तकाबुल कर सकते हैं कि फिर आज के दौर में अमूमन लोगों की नज़रों में सुन्नत की क्या अहमियत है, और लोगों में से भी अपने आप को देखेंगे। बहुत ही दिलचस्प वाक़यात आप इसमें सुनेंगी, और आपको फ़ील हो रहा है ना कि इत्तबाए सुन्नत की मिसाइल में आपको बहुत सारी अहादीस स्टोरिकल मिल रही हैं, और बिल्कुल फीलिंग ऐसी ही आती है जैसे आप सीरत को पढ़ते हुए महसूस करते हैं। सहाबे कराम रदी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अक्वाल और अफ़ाल की मनोअन, मनोअन कहते हैं एस इट इज़, इसी तरह पैरवी की करने की कोशिश फरमाते जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते या आपको करते देखते। चंद मिसालें देखेंगे। इत्तबाए सुन्नत के लिए सुन्नत की मसलहत और हिकमत समझ में आना ज़रूरी नहीं, इसको हाईलाइट कर लें। आज के दौर के मसाइल में से एक ये मसला है कि लोगों को जब दीन की कोई बात पेश की जाती है तो साथ ही कहते हैं इसकी हिकमत क्या है, भाई तुम पिक का गोश्त नहीं खाओ, अच्छा रीज़न क्या है, अच्छा तुम ये ना करो तो वो ना करो, रीज़न्स पूछते हैं। हालांकि रीज़न पूछना एक मुलाज़िम की तो शान नहीं है। छोटी सी मिसाल दे दूं कि आपके घर में अगर काम करने के लिए कोई आपने मेड रखी हुई है और आप उसको कह दें कि ऐसा करो कि आज तुम सब्ज़ी गोश्त पका लो, तो कहेगी भाई क्या हिकमत है आज आपके, अच्छा आज ऐसा करो कि तुम पुलाव बना लो, वजह क्या है, ज़रूरत क्या है, बुरी लगेगी ना। आज तुम ये कमरा साफ़ कर लो, क्यों, आप तो ये जानना चाहते हैं, ठीक है वो जो आप कहोगे, अच्छा ठीक है। अब ये तो एक मुलाजम है, उसकी और हमारी क्या औकात है और हम उसको क्या कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब कोई हुक्म दें या अल्लाह के नबी दें तो हिकमत मालूम करने की भी ज़रूरत नहीं, बस अल्लाह ने कह दिया और उसके रसूल ने कह दिया। सहाबा कराम को देखेंगे। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाहु अन्हु कहते हैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि दौराने नमाज आपने जूते उतार कर बाईं जानिब रख दिए। जब सहाबे कराम ने देखा तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए। रसूल अकरम ने नमाज़ ख़त्म की तो उन्होंने दरियाफ्त फरमाया तुम लोगों ने अपने जूते क्यों उतारे? सहाबे कराम ने अर्ज़ किया हमने चूँकि आपको जूते उतारते देखा लिहाजा हमने भी जूते उतार दिए। आपने फरमाया मुझे तो जिब्राइल ने आकर बताया कि मेरे जूतों में गलाजत है, यानी बाहर से कोई गंदगी लग गई, या कहा कि तकलीफ़देह चीज़ है, लिहाजा मैंने जूते उतार दिए। फिर आपने सहाबे कराम को नसीहत फरमाई जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आओ तो पहले अपने जूतों को अच्छी तरह देख लिया करो, अगर इनमें गलाजत हो तो इसे साफ़ कर लो, फिर इनमें नमाज़ पढ़ो। अबू दाऊद की रिवायत है। दो बातें इस हदीस से हमें मालूम हुई। पहली बात है जैसे कि पीछे भी जिक्र हो गया कि जूते पहनकर मजबूरी या ज़रूरत के तहत नमाज़ पढ़ी जा सकती है, ख़ास तौर पे आप खुली जगह पे हैं, बाहर हैं, बारिश हो रही है या ज़मीन गीली है, तो आप जूते उतारने की बजाय जूते पहन के भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर रास्ते में चलते हुए कहीं गंदगी लगी, एक तो होता है मट्टी लगना, ये गंदगी नहीं होती, मिट्टी जो है वो पाक होती है, लेकिन मिट्टी के साथ कोई जानवर की गंदगी लग गई, कोई ऐसी गलाजत थी, तो फिर उस सूरत में उस मिट्टी आप कहीं खुश्क मिट्टी पे जाके अपने पाँव को घसीट के तो उसको यानी साफ़ भी कर सकते हैं, यानी ज़ाहरी नजासत नहीं होनी चाहिए, बाकी मिट्टी का लगना, पानी का लगना, कीचड़ का लगना, ये उसको गंदा नहीं करता। लेकिन आजकल चूँकि मस्जिदें हैं, कारपेटेड हैं, अच्छी बनी हुई हैं, तो फिर आप कहें कि अंदर आके वही जूते लेके पड़ें तो ये तो बात अक्ल को भी नहीं लगती, कहाँ कोई इस बात को सुन के हदीस पे अमल करने लग जाए। तो ज़रूरत के तहत बाहर हैं, किसी पब्लिक प्लेस में सैर घूमने गए हुए हैं, सैर कर रहे हैं, प्लेइंग में हैं, कोई ऐसे जूते पहने हैं जिनका उतारना मुहाल है, फिर आप पहन लें तो कोई हरज की बात नहीं है। अगला मसला, अगली हदीस है, अबू राफे रदी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मिरवान ने हज़रत अबू हुरैरा रसी अल्लाह अन्हो को मदीना का कायम मुकाम गवर्नर बनाया। ये मिरवान अल्लाह के नबी के बाद के अदवार में आने वाले एक खुलफा में से थे, या मतलब आप कह सकते हैं कि हुकूमती सतह के शख्स थे। हज़रत अबू हुरैरा को मदीना का कायम मुकाम गवर्नर बनाया और ख़ुद किसी काम से मक्का चले गए। इसी दौरान हज़रत अबू हुरैरा ने नमाज जुमा पढ़ाई, पहली रकत में सूरज जुमा, دوسری میں سورت منافقون کی تلاوت کی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ نماز کے بعد میں ابو ہریرہ سے ملا اور عرض کیا، آپ نے وہی سورتیں تلاوت فرمائیں جو حضرت علی اپنے عہد خلافت میں کوفہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو یہ دونوں سورتیں نماز جمعہ میں پڑھتے سنا ہے، اس لیے میں نے بھی پڑھی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ دونوں صحابیوں کا جو عمل تھا ان سورتوں کو پڑھنے کا، وہ اللہ کے نبی کے عمل سے آپ نے لیا تھا، خود سے نہیں پڑھا تھا۔ پھر اگلی روایت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے۔ نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بانسری کی آواز سنی۔ کیا کہتے ہیں بانسری کو؟ فلوٹ، یعنی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے۔ آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا، اے نافع، کیا کچھ سن رہے ہو؟ یعنی کہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکال لیں اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا جیسے میں نے اب کیا۔ حضرت نافع نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ یعنی اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی زندگی میں وہاں سے گزرے، تو اللہ کے نبی نے بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں دیں، اب یہ واقعہ ہو گیا، ختم۔ یہ بعد میں اپنے غلام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے اور بانسری کی آواز آئی، تو بالکل وہی عمل کیا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، اور وہی پوچھا کہ کیا آواز آ رہی ہے، نہیں آ رہی تو چھوڑ دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی محبت کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا سنتوں کے کیا ساتھ کیا تعلق ہے۔ یعنی اس بات کو سنتے وقت میں نے ایک سنی ہوئی بات مجھے ہمیشہ یاد آ جاتی ہے کہ اب جب رواج پڑے تو لوگوں نے افطاریاں بھی بڑے ہوٹلوں میں کرنی شروع کر دیں، اور اسی طرح کی کوئی افطاری کسی شہر کے بڑے 5-سٹار ہوٹل میں تھی جہاں میوزک لازمی تھا۔ اب جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اور لوگ جاتے ہیں، اور اس وقت جو مسلمان ملکوں کی بات ہے کہ وہاں میوزک چل رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے جا کے وہاں کہا ہوگا کہ آپ اس وقت میوزک بند کر دیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے رول میں نہیں، چلیں کوئی بات نہیں، ہم میوزک بند کر کے بانسری کی آواز چلا دیتے ہیں۔ اور پھر جو بھی روایت مجھ تک پہنچی کہ پھر لوگوں نے بانسری کی آواز میں روزے افطار کیے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگلی روایت دیکھتے ہیں، حضرت حلال بن یساف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے پاس تھے، ایک آدمی نے چھینک ماری اور کہا، السلام علیکم۔ حضرت سالم نے اس کے جواب میں کہا، وعلیک ولا امی کا ولا امو کا، تیری ماں پر اور تجھ پر بھی سلام۔ پھر کہا، جو میں نے کہا شاید اس سے تجھے ناگواری محسوس ہوئی ہو۔ آدمی نے جواب میں کہا، میری خواہش تھی کہ تم میری ماں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے نہ کہ برے الفاظ سے۔ تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہا، سنو، میں نے یہ جواب اس لیے دیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور السلام علیکم کہا، تو اس کے جواب میں نبی اکرم نے بھی یہی جواب دیا، وعلیک وعلا امی کا، لہذا میں نے بھی ویسا جواب دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے بتایا کہ جب چھینک مارو تو الحمدللہ کہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ کے بعض دیگر حمد کے کلمات کا بھی ذکر کیا، اور پھر آپ نے فرمایا، چھینکنے والے کے پاس جو شخص موجود ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور چھینکنے والے کو پھر یغفر اللہ لنا ولکم کہنا چاہیے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس سے کیا بات پتہ چلی؟ ہم نے جو پہلی بات دیکھی کہ اگر ایک شخص چھینک مارتا ہے اور اس نے کہا السلام علیکم، پھر دوسرے نے کہا علیکا و امو کا، تو یہ ان صحابی کو روایت ملی ہوئی تھی اللہ کے نبی سے، انہوں نے وہی بات کہی۔ دوسری چیز ہمیں پتہ چلی کہ جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، سننے والے کہیں گے یرحمک اللہ، اگر عورت ہے تو اب یرحمک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کاف کی زیر جو ہوتی ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں کیا کہے، یغفر اللہ لنا ولکم، ایک چھینک کتنی دعائیں مل گئیں، اللہ کا رحم ہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، تمہیں بھی معاف کرے، ہم کو بھی کہے۔ اور جو شخص چھینک مارنے والا الحمدللہ نہیں کہتا نا، تو اس کو ان میں سے کوئی بات کہنے کی اجازت نہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کی چھینک کی آواز سنیں اور پھر وہ الحمدللہ نہیں کہتا، تو پھر آپ اس کو یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ بہت بڑا مجمع ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ کو دور سے کہیں سے آواز آتی ہے الحمدللہ اس کی چھینکنے کی، اب آپ کو الحمدللہ کی آواز نہیں آئی، ذرا کوئی مائک پہ آ کے تو نہیں کہے گا، تو پھر گمان کرتے ہوئے کہہ دیں کہ اس نے الحمدللہ کہا ہوگا، تو آپ بھی اس کو یرحمک اللہ کہہ دیں۔ لیکن اس سے یہ کہ اپنا عمل ضرور بنائیے کہ چھینکنے پہ ضرور یہ بات یعنی زبان سے بولیے تاکہ دوسروں کی دعائیں آپ کو مل سکیں۔ अगली हदीस है, नाफे से रिवायत है कि एक आदमी ने अब्दुल्ला बिन उमर के पास छींक मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, तो मैं भी कहता हूँ, यानी मुझे भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह ने हमें यूँ सिखाया, छींकने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल, यानी हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, ये कहें। लिहाजा जो सुन्नत तरीका है वही इख्तियार करो। तिर्मिज़ी ने रिवायत किया, यानी बज़ाहर आप देखिए कि पहली बात ज़्यादा अच्छी लग रही है ना सुनने को, लेकिन कहा नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, वो किसी और मौके पर कहो, लेकिन छींकने के मौके पर अल्लाह के नबी ने यही कहा। तो इतना ज़्यादा वो एहतियात करते थे इस बात में कि थोड़ी सी भी आपकी सुन्नत से दूर ना हटें। अगली रिवायत, जैद बिन असलम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हों ने हिजरे अस्वद को मुखातिब करके फरमाया, हिजरे अस्वद क्या है? वो पत्थर जो स्याह रंग का है और जो काबा के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। क्या कहा? वल्लाही मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना नुकसान पहुँचा सकता है ना नफ़ा दे सकता है। अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तलाम कहते हैं बोसा देना, हिजरे अस्वद को हाथ लगाकर बोसा देना, करते ना देखा होता तो तुझे कभी ना चूमता। फिर फरमाया, अब हमें रमल करने की क्या ज़रूरत है? रमल तो दुश्मनों को दिखाने के लिए था, अब तो अल्लाह ने इन्हें हलाक कर दिया। फिर खुद ही फरमाया, लेकिन रमल तो वो चीज़ है जो अल्लाह ताला के रसूल की सुन्नत है, और सुन्नत छोड़ना हमें पसंद नहीं। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। इस्तलाम तो हमने देख लिया, यानी जब हिजरे अस्वद के पास से तवाफ़ शुरू किया जाता है तो मसनून अमल यह है कि अगर आप मुमकिन हो तो हाथ उसको लगाएं और फिर बोसा दें जब गुजरें, लेकिन ना कर सकें दूर से हो तो फिर और मसला है। दूसरी चीज़ यह है कि रमल, रमल क्या होता है कि जब हाथ जाते हैं लोग उम्रे के लिए तो जो पहला चक्कर होते हैं उसमें थोड़ा सा भाग के चक्कर लगाते हैं। असल में ये आप पढ़ेंगे सीरत की क्लास में भी इंशाल्लाह, कि जब मुसलमान उम्रे के लिए आए थे मक्का में तो मक्का वालों ने खबर फैला दी हुई थी कि मदीना के बुखारों ने तो इनको कमज़ोर कर दिया है, ये तो बेचारे बस अब बहुत ही नहीफ हो गए हैं। तो अल्लाह के नबी ने उनको, ये पहलवानों की तरह चलते हैं जैसे जॉगिंग स्टाइल होता है ना, छोटे छोटे कदम लेके और इस तरह तेज़ तेज़ चलना, तो उससे ज़रा दुश्मन को देख के रोब आता है कि इन लोगों में तो अभी भी बड़ी जान है। तो जो आपने किया वो ही सहाबे कराम ने किया। अगली रिवायत, अबू अयूब अंसारी, बड़ी प्यारी रिवायत है, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास जब खाना लाया जाता तो आप इसे तनावुल फरमाने के बाद मेरे पास भेज देते। एक रोज़ आपने बर्तन जूं का तूं खाए बगैर मेरी तरफ़ भेज दिया क्योंकि इसमें लहसुन था। मैंने आपसे पूछा, क्या लहसुन हराम है, गार्लिक? आपने फरमाया, नहीं, लेकिन मैं इसकी बू की वजह से इसे पसंद नहीं करता। हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी ने कहा, जो चीज़ आप नापसंद फरमाते हैं मैं भी उसे नापसंद फरमाता हूँ। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और अबू अय्यूब अल अंसारी कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले होस्ट थे। मदीना में जाने के बाद आपने शुरू में इन्हीं के घर में क़याम किया था। तो यूं ही दिनों में से एक वाक़या है कि आप उनके लिए खाना बना के भेज देते थे, ऊपर आप खा लेते जितना खा लिया होता, और उसके बाद जब वो वापस भेजते तो उस थाल में से आपकी उंगलियों के निशान देख देख के उसके ऊपर से ये भी खाते थे, यानी आपका बचा हुआ खाना ये खाते थे और ढूंढा करते थे कि आपने कहाँ से खाया है। लेकिन एक दिन जब देखा कि नहीं खाया हुआ तो फिर ये मसला पेश आया। इससे पता चलता है कि सहाबा करम कितनी मोहब्बत फरमाते थे अल्लाह के नबी से। अगली रिवायत, इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। क्या? अल्लाह की तौहीद, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े और हज अदा करना। एक आदमी ने बात दोहरा कर पूछा, हज और रमज़ान के रोज़े? इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हों ने फरमाया, नहीं, रमज़ान के रोज़े और हज। मैंने रसूलुल्लाह से इसी तरतीब से हदीस सुनी थी। सुबहानअल्लाह, तरतीब नहीं बदल सके हम, होते कहते हाँ कोई हरज नहीं हज भी है, कहा नहीं, पहले रोज़ा फिर हज। अब आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे शायद आगे भी एक रिवायत कि एक सहाबी थे बरा बिन आज़िब, तो उनको अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई रात को सोने की है, और जब दुआ सुना दी तो फिर कहा अब तुम मुझे सुनाओ, तो उन्होंने सिर्फ रसूल के लफ्ज़ और नबी के लफ्ज़ को बदल दिया, यानी नबी के लफ्ज़ की बजाय रसूल का कह दिया या रसूल की बजाय नबी का, तो अल्लाह के नबी ने वहीं रोक दिया, कहा नहीं, जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया वही बोलो। तो आज हम तो दुआओं में जो अगले पिछले काफ़ी दाफ़े लगा के और अज़ाब नार, अज़ाब बिलकब्र, अज़ाब बिलहश्र, अज़ाब बिल पता नहीं क्या करते रहते हैं। अमूमन आप देखें कि नमा जो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाब नार, ये कुरान की दुआ है। इसी तक रुक जाए, लोग इसके आगे बढ़ाते हैं, अजाबिल कब्री वजाबिल हशरी, और आगे भी कुछ कहते हैं, इजाज़त नहीं है, जो चीज़ जहाँ तक आ गई वहीं पे रुक जाए। तो बहरहाल इससे पता चला कि सहाबे कराम तरतीब भी नहीं बदलना चाहते थे। अगली रिवायत जैद बिन असलम से कहते कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को खुले बटनों के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा, मैंने आपसे पूछा ऐसा आप क्यों करते हैं, कहा मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे ही नमाज पढ़ते हुए देखा। इब्ने खुजैमा ने इसको रिवायत किया, यानी अगले बटन खोल देते थे। बाज़ रिवायतें आप ऐसी पढ़ेंगे कि कोई सहाबी को रिवायत बयान करते हैं और साथ ही मुस्कुरा दिए, क्यों मुस्कुराए, कहा इसलिए कि जब अल्लाह के नबी ने ये रिवायत बयान की थी तो वो भी मुस्कुराए थे। इतना प्यार, छोटा छोटी बातों में आपसे मोहब्बत करते थे ना। बाज़ दफ़ा इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर टेक लगाते थे तो ये टेक लगा के उस रिवायत को बयान करते थे। तो जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसकी एक छोटी छोटी अदा पे और उसकी एक एक छोटी हरकत पे भी गौर करता है, और सहाबा किराम उन्हीं लोगों में से थे। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह कहते हैं, हम अब्दुल्ला बिन उमर के साथ एक सफ़र में जा रहे थे, एक जगह से गुजरे तो अब्दुल्ला बिन उमर रास्ते से दूर हट गए। इनसे पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे ही करते देखा है इसलिए मैंने ऐसा ही किया। यानी वहां से हट गए। यहां तो सिर्फ इतनी बात आती है बल्कि ये अगली रिवायत बल्कि आपको मजीद वाज़ह करेगी। हजरत अनस बिन सीरी फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर के साथ अरफात में था, जब वो कहीं जाते तो मैं भी इनके साथ जाता, यहाँ तक कि हम इमाम के पास पहुँचे और इसके साथ नमाज़े ज़ुहर और असर मिलाकर यानी जमा करके अदा की। फिर अब्दुल्ला बिन उमर ने वकूफ़ फरमाया, वकूफ़ का मतलब है खड़े हुए, जो ख़ास तौर पे नौ ज़िलहज के दिन जो ज़ुहर के और असर के बिटवीन का जो यानी सनसेट तक जो खड़ा होना होता है उसको वकूफ़ कहते हैं। तो मैं और मेरे साथियों ने भी इनके साथ वकूफ़ किया, यहाँ तक कि इमाम अरफात से वापस लौटे तो हम भी इनके साथ वापस लौटे, यहाँ तक कि उसी तंग रास्ते पर पहुँचे जो माजमीन जगह का नाम है इससे पहले है। वहाँ पहुँचकर अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी सवारी बिठा दी और हमने भी अपनी सवारियाँ बिठा दी। हमारा ख्याल था कि अब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन जो मुलाजम इनकी सवारी पर मुतय्यन था उसने बताया कि अब्दुल्ला बिन उमर नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते, बल्कि अल्लाह के नबी ने यहाँ पहुँच कर हाजत ज़रूरिया से फ़ारिग हुए थे। यानी नबी अक्रम यहाँ पहुँच कर हाजत ज़रूरिया से फ़ारिग हुए थे, चुनाच अब्दुल्ला बिन उमर भी इसी जगह हाजत ज़रूरिया से होना पसंद किया करते थे। मुस्लिम अहमद ने रिवायत किया, यानी सफ़र में थे और उस वक़्त ख़ास जिस जगह पे अल्लाह के नबी बैठे, यहाँ इस वाक़े की इस तरह एक और रिवायत में भी आता है कि एक सफ़र में थे और एक ख़ास जगह पे अपनी सवारी से उतरे और बिल्कुल इस कैफियत में बैठ के जैसे इंसान कज़ाए हाजत के लिए बैठता है रेस्ट रूम में, तो फिर उठ के कुछ भी तलब नहीं थी, कुछ किया भी नहीं, कुछ ऐसा मामला नहीं, तो कहा ये आप किस तरह बैठने में क्या हिकमत थी, तो कहा मैंने एक दफ़ा अल्लाह के नबी के साथ सफ़र किया था और ठीक इस मुकाम पर आप अपनी ज़रूरत से फ़ारिग हुए थे, जब आज मैं यहाँ से गुज़रा तो मैंने सोचा कि मैं सुन्नत से क्यों महरूम रहूँ और सिर्फ़ आपकी मोहब्बत में मैं ऐसे बैठा। अब ये बातें हमें तो दीवानगी लगेगी ना, हम कहेंगे क्या थे, अब इतनी भी क्या बात है, ये तो शख्सियत परस्ती हुई, नहीं ये मोहब्बत परस्ती है, जिससे मोहब्बत होती है और ख़ास तौर पर अल्लाह का नबी उनके लिए तो एक एक चीज़ जो थी सहाबा करम इस तरह देखा करते थे कि छोटी छोटी बात में आपकी बात को कॉपी करते थे। अनस बिन सीरी कहते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि अनस बिन मालिक मुल्क शाम से तशरीफ़ लाए तो ऐन तमर के मुकाम पर हमने इनका इस्तकबाल किया, मैंने इन्हें गधे पर नमाज़ पढ़ते देखा और गधे का रुख किबले की बजाय किबले के दाईं तरफ था। मैंने अनस से पूछा आपने किबले की तरफ रुख किए बग़ैर नमाज़ क्यों पढ़ी, उन्होंने फरमाया अगर मैं रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह नमाज़ पढ़ते ना देखता तो कभी नमाज़ ना पढ़ता। इसे सही बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया, यानी मुल्क शाम से तशरीफ़ लाए थे और एक ख़ास ऐसा मुकाम था कि जहाँ आपने ये एक्शन हासिल किया। और इससे ये भी पता चला कि नफिल नमाज थी तो किबले के तायुन के अंदर अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो के भी नमाज़ पढ़ी गई तो वो भी उसकी भी रुख्सत है। अगली रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर से कहते हैं कि नबी अकरम ने सोने की एक अंगूठी बनवाई तो सहाबे कराम ने भी आपकी देखा देखी अंगूठियाँ बनवा लीं, आपने फरमाया मैंने सोने की अंगूठी बनवाई थी तुमने भी बनवा ली, चुनाचे आपने अंगूठी उतार फेंकी और फरमाया अब मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपकी इत्तबा में सहाबे कराम ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ उतार कर फेंक दी। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। अब सवाल पैदा होता है कि आपने सोने की अंगूठी क्यों बनवाई पहले, फिर सहाबा ने क्यों बनवाई, जबकि आज तो सोना हराम है, तो ये हुक्म उतरने से पहले की बात थी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने कभी सोने की अंगूठी नहीं बनवाई बल्कि आपके पास चांदी की अंगूठी होती थी जिसमें आपकी मोहर नबूवत थी। और उस दौर में रिवाज के, और ये भी तब बनी, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सीरत में, कि जब बादशाहों को ख़त भेजने का वक्त आया तो उस दौर में रिवाज था कि स्टैम्प्ड लेटर के अलावा कबूल नहीं करते थे। जैसे आज भी आप देखें, एक मुल्क का बादशाह या वजीर आजम किसी दूसरे को भेजे तो उसके ख़ास कोई गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, तो उस दौर में स्टैम्प का होना जो था वो डॉक्यूमेंटेशन थी। तो इसके अलावा यानी कोई आपने इस तरह अपने फैशन के लिए या मंगनी या शादी की अंगूठी नहीं बनवाई थी कि जो आज हमारे यहाँ पहनी जाती है शादी के मौके पर। अगली रिवायत है, सहाबी रसूल इब्ने खंजलिया से रिवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, अगर खुरैम असदी के बाल लंबे ना होते और तहबन नीचे लटका हुआ ना होता तो बहुत अच्छा आदमी था। रसूलुल्लाह की ये बात खुरैम असदी तक पहुंच गई तो खुद ही छुरी लेकर कानों तक अपने बाल काट दिए और तहबन निस पिंडलियों तक ऊंचा कर दिया। यानी इनके बारे में अल्लाह के नबी ने कमेंट बस दिया कि बहुत अच्छा आदमी है लेकिन इसके बाल इतने लंबे नहीं होने चाहिए थे, या इसके मतलब शलवार जो है, जो अजार है वो ज़्यादा ना हो, तो बर्दाश्त नहीं कर सके कि वेट करें या कोई और मेरे बाल काटे, खुद ही छुरी से काट लिया। और आप सोचें कैसे कटे होंगे, हैं, और जो तहमन काटा होगा वो भी कैसा होगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी देखी तो उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, तुम में से कोई सोने की अंगूठी पहनकर गोया आग के अंगारे का कसरत करता है, यानी हाथ में आग का अंगारा पकड़ता है। आपके तशरीफ़ ले जाने के बाद इस आदमी से कहा गया, अंगूठी उठा लो और इससे कोई दूसरा फ़ायदा हासिल कर लो, यानी अपनी बीवी या बहन को दे दो या फरोख्त करो, यानी औरतों पे तो हराम नहीं था। सहाबी ने कहा, अल्लाह की कसम जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने फेंक दिया इसे कभी ना उठाऊंगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। और आखिरी रिवायत इस चैप्टर की हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, एक मरतबा जुमे के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाए तो फरमाया, लोगो बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो ने सुना तो मस्जिद के दरवाज़े पर ही बैठ गए। रसूलुल्लाह ने देखा तो फरमाया, अब्दुल्ला मस्जिद के अंदर आकर बैठो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। यानी इतनी भी देर नहीं करना चाहते थे कि जितनी देर में कोई अंदर आके बैठे। इसी तरह एक मौके पे नबी सल्लम किसी से खुतबे में बयान कर रहे थे, खड़े हो जाओ, तो हज़रत उमर जो थे वो उस वक़्त दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे मस्जिद के, तो वहीं खड़े हो गए। थोड़ी देर लोगों ने देखा, आप क्यों खड़े हो गए, कहा मैंने अभी अल्लाह के नबी की आवाज़ सुनी है कि तुम खड़े रहो, तो कहा वो आपको थोड़ी कहे, वो तो अंदर एक शख्स था उसको कहा था, कहा अच्छा, फिर ये सुन के अंदर गए। तो लिहाजा ये आपके मोहब्बत करने वालों की बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम रुकेंगे इंशाल्लाह।